और के लोग हजारों वर्ष तक भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं, किंतु जब त्रेता युग आया, त्रेता युग में 25% अधर्म आया और धर्म 75% रह गया, जिसके कारण लोगों की आयु 1,00,000 वर्ष से 10,000 वर्ष। तो त्रेता युग में लोग 10,000 वर्ष तक जीवित रहते, इसलिए त्रेता युग के लिए जो युग धर्म था वो था भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करना। अरे यज्ञ अनुष्ठान सभी लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत खर्चेला होता था, बहुत खर्च लगता था उसमें, इसलिए राजा महाराज लोग ही यज्ञ अनुष्ठान करते थे और उसी में सारी प्रजा भाग लेते थे यज्ञ अनुष्ठान। और यज्ञ का उद्देश्य था भगवान विष्णु को संतुष्ट करना, इसलिए भगवान विष्णु का दूसरा नाम यज्ञ है, उनको यज्ञ पुरुष कहा गया है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञाता मां शांति मृत्यु, कि व्यक्ति जीवन में कैसे शांति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भौतिक संसार में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं ही भक्ता हूं, मेरे भोग के लिए सब कुछ उद्दिष्ट है। और जब व्यक्ति के भोग में कोई बाधा उत्पन्न होती है, दूसरे किसी व्यक्ति ने बाधा उत्पन्न कर दी, तो वहां कलह होता है, झगड़ा होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुत्तों को, एक कुत्तों को कोई जो बाहर घूमते रहते हैं, तो ये कुत्ते एक एक गली को अपनी गली मान लेते हैं। उनको किसी ने नहीं दिया दायित्व कि तुम इस गली की बात देखना, ये अपने आप एक गली में रहने लगते हैं और उस गली को अपना मान लेते हैं। और उस गली में कोई दूसरी गली का कुत्ता आ जाए तो क्या होता है, वहां तो भौंकने लगता है, क्यों हमारी गली में आया, हमारे राज्य में तुम क्यों आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं संसार में भी इसलिए कलह झगड़ा सब होता है कि हमारे भोग में दूसरा कोई बाधा उत्पन्न करता है तो हम उसके साथ झगड़ा करते हैं। तो ये जो भोगवादी संस्कृति है, विशेष रूप से कलयुग में, ये भोगवादी संस्कृति के कारण हम अशांति में सदा सर्वदा हम चिंताग्रस्त रहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई जीवन में शांति प्राप्त करना चाहता है तो उसको ये जानना आवश्यक है कि वो स्वयं भोक्ता नहीं है, मैं कृष्ण सारे यज्ञ और तपस्या का भोक्ता, अर्थात जो भी यज्ञ अनुष्ठान किया जाए, तपस्या व्रत आदि किया जाए, उसका उद्देश्य मुझे संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए। तो यज्ञ के ईश्वर हैं भगवान विष्णु या कृष्ण, तो उनको यज्ञ के माध्यम से संतुष्ट किया जाता था। तो राजा महाराज लोग बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, उससे सारे देवतागण प्रसन्न होते थे, भगवान विष्णु प्रसन्न होते थे, देवतागण प्रसन्न होते थे, इसलिए राज्य में समय पर वर्षा होती थी। जब इंद्र संतुष्ट होते हैं तो समय पर वर्षा होती है, जब इंद्र संतुष्ट नहीं है समय पर वर्षा नहीं होगी, अनावृष्टि होगी, इसलिए शस्य उत्पादन नहीं होंगे, लोग कष्ट भोग करेंगे। तो इसलिए त्रेता युग में ये रखा गया था यज्ञ अनुष्ठान। और उस समय जब यज्ञ अनुष्ठान होता था तो स्वयं भगवान विष्णु और देवतागण यज्ञ स्थल पर आविर्भूत होते थे, और जो राजा महाराज लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त होता, जिस उद्देश्य से यज्ञ करते थे उसका फल तुरंत प्राप्त होता था, किंतु कलयुग में ये यज्ञ अनुष्ठान सफल नहीं है, क्योंकि यद्यपि मंत्र वही है वेदों में, यज्ञ करने के लिए जो मंत्र है वो सब है शास्त्रों में, किंतु उस मंत्र को उच्चारण करने के लिए उपयुक्त ब्राह्मण कलयुग में नहीं। इसलिए कलयुग में जितने भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं ये सब विफल है, इसका कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि मंत्र उच्चारण ठीक ढंग से नहीं होता। तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण ये ठीक ढंग से होना आवश्यक है उसका फल प्राप्त करने के लिए। इसलिए कलयुग में यज्ञ अनुष्ठान विफल है। और जैसे सत्ययुग में तपस्या करते थे मुनि ऋषि लोग, भगवान का ध्यान करते थे, कलयुग में वो भी संभव नहीं। एक तो हमारी आयु बहुत कम है कलयुग, और हम इतनी उत्कंठा में हम रहते हैं, हर समय समस्या में घिरे रहते हैं, तो उसमें घर द्वार छोड़ के जाके वन में तपस्या करके भगवान का ध्यान करना ये संभव नहीं है। तो फिर जब द्वापर युग आया, द्वापर युग में 50% अधर्म आ गए और 50% धर्म रहा, इसलिए लोगों की आयु 10,000 वर्ष से घटकर 1,000 वर्ष हो गए। और द्वापर युग में लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते थे मंदिरों में या घर पर, भगवान के विग्रहों की पूजा करते थे, इसलिए कहा गया कि द्वापर परिचर्या है। द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए यही विधि थी कि भगवान की मूर्ति की पूजा करें शास्त्र विधि के अनुसार। किंतु जब कलयुग आया तो 25% धर्म रह गया और 75% अधर्म आ गया, और ये जो 25% धर्म रह गया है, कलयुग जितना आगे बढ़ेगा ये 25% धर्म काम होते होते शून्य हो जाएगा। तो जब धर्म पूरा लुप्त हो जाएगा, उसमें पूरा अधर्म परिव्याप्त हुआ कलयुग में, तो उस समय की अवस्था का हम वर्णन नहीं कर सकते क्या होगा। अभी तो आप लोग देख रहे हैं जो कलयुग की अवस्था है, तो जिसके कारण कलयुग में लोगों की आयु 1,000 वर्ष से 10 गुना कम हो गया, 100 वर्ष रह गया, और अब 100 वर्ष भी लोग जीवित नहीं रहते। कलयुग जितना आगे बढ़ता है लोगों की आयु उसकी तुलना में घटती जाती है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग 90-95 तक जीवित रहते हैं, इतना भी रहते नहीं है जीवित, 70-80 के भीतर अधिकांश लोग चले जाते हैं, कोई 1-90 तक रह गए तो बहुत बड़ी बात है। तो कलयुग में हमारी आयु कम हो गई, हमारी शक्ति भी कम हो गई, शारीरिक शक्ति, और मानसिक शक्ति स्मरण शक्ति भी कम हो गई। तो हर तरह से कलयुग के लोग ये मंद भाग्य कहे गए, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रव। तो ये कलयुग के लोग मंद भाग्य है उनका, हर तरह से कष्ट भोग करते रहते हैं। यद्यपि हम सुनते हैं कि हम वैज्ञानिक अग्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किंतु वस्तुतः हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। प्राचीन काल में लोग इतने संपन्न थे, सत्ययुग में त्रेता युग में तो सोने की थाली में खाते थे लोग, आजकल हम किस थाली में खा रहे हैं, पेपर प्लेट। ये हमारी अग्रगति है, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं किंतु खा रहे हैं किस पेपर प्लेट। तो ये हमारी स्थिति है। तो द्वापर युग में लोग भगवान की अर्चना करते थे, किंतु जब कलयुग आया तो लोगों की आयु कम हो गई और कलयुग में भगवान के मंदिर में यद्यपि पूजा अर्चना होती है, फिर भी हम शुद्धता पूर्वक कोई पूजा अर्चना नहीं कर पाते। आप बाजार से जाएंगे भगवान को अर्पित करने के लिए घी लाने के लिए, और बाजार का घी कैसे बनता है आप लोग जानते हो, चर्बी से बनता है, ये दूध दही से नहीं बनता है। तो बाजार की किसी भी चीज पर हम विश्वास नहीं कर सकते, जो भी चीज बाजार से खरीदते हैं हम विश्वास नहीं कर सकते, उसमें क्या मिलावट है। कम से कम घर में जो हम करते हैं हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। बाजार की चीज हम खरीद के भगवान को भोग लगा देते हैं, हम नहीं जानते हैं कि बाजार चीज में क्या है और क्या हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। आप सोचेंगे कि बाजार से हम हल्दी का पाउडर लाते हैं, खरीदते हैं, मसाला खरीदते हैं ना सब बाजार से। अच्छा, आप क्या सोच सकते हैं कि हल्दी के पाउडर में क्या मिला होगा? आप सोचेंगे कि हल्दी का पाउडर तो शुद्ध है, हल्दी से बनता होगा और बाजार से हम ला के डाल देते हैं सब्जी में। तो हमको पता नहीं कि हल्दी पाउडर में भी गधे का मल उसको पाउडर बना के उसमें मिला देते हैं, क्योंकि वो पीला दिखता है। गधे का जो बिस्टा है मल है वो पीला दिखता है, उसको सुखा के पाउडर करके हल्दी पाउडर में मिला देते हैं और हम उसको सब्जी में डालते हैं, खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। इसलिए कोई भी चीज शुद्ध चीज हम प्राप्त नहीं होते हैं कभी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, साबुन में चर्बी मिलता है, साबुन व्यवहार करते हैं शरीर में, टूथपेस्ट व्यवहार करते हैं, तो ये बाजार की चीज में किसी चीज पर भरोसा नहीं है। हम क्या खाते हैं क्या करते हैं, ये कलयुग की अवस्था है। इसलिए यद्यपि मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना होती है, कोई शुद्ध द्रव्य हम अर्पित नहीं करते हैं। इसलिए कलयुग के लिए ना तो हम तपस्या कर सकते हैं, ना यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं, और ना भगवान के विग्रह की आराधना भी ठीक ढंग से कर सकते हैं। तो फिर कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? कलयुग के लोग जो कष्ट में हैं, दुख में हैं, और कष्ट बढ़ता जाता है। आप जानते हैं विदेश में है, जो पानी पीते हैं वो पानी कहाँ से आता है? वहां पानी का अभाव है। आप जो बाथरूम का पानी है उसको रिसाइकलिंग करते हैं और उसको फिर पीने के पानी के रूप में देते हैं। और इंडिया में उसको आ रहा है, जो विदेश में हो रहा है उसमें भारत में आ रहा है। तो ये स्थिति है हमारी। इसलिए कलयुग में लोगों का कैसे उद्धार होगा दुखों से, कष्ट से? इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि कलयुग के लोग एक काम कम से कम कर सकते हैं जो शुद्ध है, कलोतत हरि कीर्तन। भगवान का जो नाम है इसमें कोई मिलावट नहीं, और हम मिलावट कर ही नहीं सकते भगवान के नाम। और भगवान के अनंत नाम नामनंगकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल। भगवान के जो नाम है, भगवान ने अपने नामों में उनकी अनंत शक्तियां भर दी, अपनी सारी शक्तियां भर दी। और भगवान के नाम लेने में कोई समय की पाबंदी नहीं, प्रतिबंध नहीं कि इस समय केवल भगवान का नाम ले सकते हैं, इस समय नहीं ले सकते, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। किसी भी समय सोते उठते बैठते खाते चलते हर समय हम भगवान का नाम ले सकते, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। तो कलियुग के लोग कम से कम एक बात कर सकते हैं कि भगवान का नाम ले सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान के नाम से संबंधित कई मंत्र हैं और मंत्र जप करने से पहले प्रणव का जप करना पड़ता है, प्रणव जो ओम उच्चारण हम करते हैं, ओम का उच्चारण करना पड़ता है, मंत्र के साथ प्रणव भी रहता है। और कलियुग के लोग शास्त्रों में वर्णन है कि केवल ब्राह्मण लोग ही ओम का उच्चारण कर सकते, बाकी लोग नहीं कर सकते, तो बाकी लोगों का उद्धार फिर कैसे होगा? कलियुग में सभी तो ब्राह्मण नहीं है, और आजकल भी जो ब्राह्मण है केवल जाति के ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्म भी नहीं है उनमें। तो इसलिए भगवान ने एक सरल व्यवस्था दी कलियुग के लोगों के लिए, और इस प्रकार अपना नाम प्रदान किया है जिस नाम को हर कोई जप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, बच्चे से लेकर वृद्ध तक। बच्चों को आप कहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेव, आप उच्चारण करो, बच्चे नहीं कर सकते, किंतु भगवान इतने कृपालु हैं कि कलियुग के लोगों के उद्धार के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आए और इस हरे कृष्ण महामंत्र को प्रदान किया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रवर्तन किया, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और अपने भक्त के रूप में आए हैं कलयुग के लोगों को भक्ति सिखाने के लिए, और उन्होंने जो महामंत्र प्रदान किया
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
इस महामंत्र को बच्चा भी गा सकता है, वृद्ध भी गा सकता है, पुरुष स्त्री सभी लोग गा सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने और एक वरदान दिया है इस महामंत्र के साथ जो दूसरे किसी कलयुग में लोगों को प्राप्त नहीं होता, कि जो भी इस महामंत्र का जप और कीर्तन करता है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाता है। तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त होना ये सरल नहीं है, किंतु ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा कि इस कलयुग के लोगों को ये वरदान मिला है, इसलिए हम आसानी से भगवान का नाम ये हर महामंत्र का नित्य प्रति जप कर सकते हैं माला में, और जब एकत्रित होते हैं सत्संग में तब एक साथ मिलकर कीर्तन कर सकते हैं, उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमारे पूर्व जन्मों के जितने पाप कर्मों के फल हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम संसार में दुख भोग करते हैं अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप। जब पाप कर्म नष्ट हो जाएगा फिर हमें दुख भोग करना नहीं पड़ेगा, और भगवत गीता में भगवान कृष्ण अंतिम उपदेश भी वही देते हैं, क्या सर्वधर्मान परित्यज मां एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शिष्य। कि सारे धर्मों का परित्याग करके केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत। तो भगवान कह रहे हैं उनकी शरण में जाने से तो पाप कर्मों से मुक्त कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारा दुख भी समाप्त हो जाएगा भगवान कृष्ण की शरण में जाने से, उनका भक्त बनने से, उनकी पूजा करने से, उनकी कथा श्रवण करने से, उनका नाम कीर्तन करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा और पाप नष्ट हो जाएगा, इसका अर्थ ही हमारा दुख भी दूर हो जाएगा। तो कलयुग के लिए ये सरल उपाय भगवान ने प्रदान किया। इसलिए हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो भगवान कृष्ण की शरण में जाए, उनका नाम जप करे, कीर्तन करे और गीता भागवत का पाठ करे और भक्तों के मुख से श्रवण करे। इस प्रकार हम भगवान कृष्ण के प्रति हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न हो, हम बार बार श्रवण करेंगे भगवान कृष्ण के बारे में तो उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो, और भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होने पर और हमारी जीवा में उनका नाम कीर्तन करने पर क्या होगा कि हमारा हृदय तो शुद्ध होगा, हमारा मन सदा सर्वदा कृष्ण में लगा रहेगा। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अंतःकाल च मामेवं स्मरन् मुक्तः कलेवरम् या प्रयाति समभाव याति नश्यति संशय। कि मृत्यु के समय जो मेरा नाम लेकर या मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, मृत्यु के पश्चात वो मेरे पास आता है, मेरे धाम में आता है, उसका इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान कृष्ण हमें मार्ग बता रहे हैं कैसे हम संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं और उनके पास जा सकते हैं, सदा के लिए संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान कृष्ण के पास जाकर नित्य आनंद उपभोग कर सकते। इसलिए आप लोग जो कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप बहुत अच्छा है, जो भक्त बने हैं, जो नहीं बने हैं आप लोग भी भगवान कृष्ण की शरण में जाइए, कृष्ण का भक्त बनिए और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कीजिए। हरे कृष्ण।